अध्याय 25 निर्गमन। यह अध्याय निर्गमन 12 आयत 34 से 51, 13, 15 पर आधारित है। अपनी कमर कस के, पैरों में जूते पहने, हाथ में लाठी लिए, इज़राइल आगे बढ़ने के राजसी जनादेश की प्रतीक्षा में चुपचाप, आदरयुक्त भय के साथ, लेकिन आशान्वित खड़े हुए थे। पौ फटने से पहले वे अपने रास्ते पर थे। विपत्तियों के समय जैसे जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य ने बंधकों के हृदयों में विश्वास को जागृत किया था और उनका उत्पीड़न करने वालों के मन में भय उत्पन्न किया था, वैसे वैसे इसराइलियों ने अपने आप को गोशेन में इकट्ठा किया और उनके अकस्मात निर्गमन के बावजूद पलायन करने वालों के नियंत्रण और आवश्यक व्यवस्था के लिए प्रयोजन कर दिया गया था। उन्हें अलग अलग दलों में नियुक्त अगुवों की देखरेख में विभाजित कर दिया गया था और बाल बच्चों को छोड़कर कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ भी गई। इस भीड़ में केवल वही नहीं थे जो इज़राइल के परमेश्वर में विश्वास से प्रेरित हुए थे, वरन इनसे भी अधिक वे लोग थे जो केवल विपत्तियों से बचना चाहते थे, या वे जो केवल उत्सुकतावश और जोश में भीड़ के साथ चल दिए थे। इस श्रेणी के लोग हमेशा ही इज़राइल के लिए एक प्रलोभन का जाल व बाधा बने रहे। ये लोग अपने साथ भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत से पशु ले गए। यह उन इज़राइलियों की संपत्ति थी जिन्होंने अपनी संपत्ति को राजा को नहीं बेचा था, जैसा कि मिस्रियों ने किया था। याकूब और उसके पुत्र अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों को अपने साथ मिस्र लाए थे, जहां उनमें बढ़ोतरी हुई थी। मिस्र छोड़ने से पहले मूसा के निर्देशन में लोगों ने अपने अवैतनिक परिश्रम के मुआवजे का दावा किया और मिस्री उन्हें मना न कर सके क्योंकि वे उनकी उपस्थिति से स्वतंत्र होने को आतुर थे। बंधुए अपने उत्पीड़नकर्ताओं से लूटी सामग्री से लदे हुए गए। उस दिन अब्राहम को भविष्य सूचक स्वप्न दर्शन में बताए गए इतिहास को पूर्ण किया। तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बहुत सा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। उत्पत्ति 15:13-14। 400 वर्ष पूरे हुए। ठीक उसी दिन यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। मिस्र से प्रस्थान करने में इसराइली यूसुफ की हड्डियों की एक अनमोल धरोहर को लेकर गए, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा में थी और जो दासत्व के अंधकारमय वर्षों में इज़राइल के छुटकारे का स्मृति पत्र रही थी। कनान के लिए सीधे मार्ग पर जाने के बजाय, जो पलिश्तियों के देश से होकर निकलता था, परमेश्वर ने उन्हें दक्षिण की ओर लाल समुद्र के किनारों की ओर जाने का निर्देश दिया। परमेश्वर ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। पलिश्तिया में से निकलने का प्रयत्न करने पर उनकी प्रगति का विरोध किया जाता, क्योंकि यह जानते हुए कि वे दास अपने स्वामियों से छुपकर भाग रहे थे, पलिश्ती उनके साथ युद्ध करने में नहीं हिचकिचाते। उन शक्तिशाली योद्धा प्रवृत्ति के लोगों के साथ मुठभेड़ के लिए इसराइली बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें परमेश्वर का कुछ ही ज्ञान था और उनका उस पर विश्वास भी कम था, और वे बहुत जल्दी भयभीत और हतोत्साहित हो जाते। वे निहत्थे थे और युद्ध के अभ्यस्त नहीं थे। लंबे समय के दासत्व से वे दबे हुए से जोशहीन थे और स्त्रियों, बच्चों, भेड़ बकरियों व गाय बैलों से भारग्रस्त थे। उन्हें लाल समुद्र के रास्ते से ले जाने के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं को दयालुता और न्याय का परमेश्वर प्रमाणित किया,
और उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल के छोर पर एताम में डेरा डाला,
और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में होकर और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से चलताया। भजन संहिता 105 आयत 39 में लेखक कहता है, उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। इसके अलावा पहला कुरंथियों 10 आयत 1-2 भी देखिए। उनके अदृश्य मार्गदर्शक का ध्वज हमेशा उनके साथ रहा। दिन में मेघ उनका मार्गदर्शन करता था, तंबू की तरह भीड़ पर फैल जाता। वह भीषण गर्मी से उन्हें बचाता था और निर्जल शुष्क मरुस्थल में अपनी ठंडक और नमी से ताजगी उत्पन्न करता। रात को वह आग का खंभा बन जाता और उनके डेरे को दीप्तिमान करके उन्हें पवित्र उपस्थिति का लगातार आश्वासन देता। यशायाह की भविष्यद्वाणी के एक अत्यंत सुंदर व सुखदायी दृष्टांत में बुराई की शक्तियों के साथ महान निर्णायक संघर्ष में परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति दायित्व को दर्शाने के लिए आग और मेघ के स्तंभ का उल्लेख किया गया है। तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। यशायाह 4:5-6। उन्होंने एक निर्जन मरुस्थल जैसे फैले हुए क्षेत्र में यात्रा की। वे उत्सुक होने लगे थे कि वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वह उन्हें कहाँ लेकर जाने वाला था। वे उस दुर्गम रास्ते पर यात्रा करते हुए थक गए थे और कईयों के हृदयों में मिस्रियों द्वारा पीछा किए जाने का भय उत्पन्न होने लगा था, लेकिन बादल उनके आगे आगे चलता रहा और वे उसके पीछे पीछे चलते रहे। अब परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वे एक पहाड़ी संकीर्ण घाटी में समुद्र के किनारे डेरा डाले। उस पर प्रकट किया गया कि फिरौन उनका पीछा करेगा, लेकिन उनके छुटकारे में परमेश्वर की महिमा होगी। मिस्र में यह समाचार फैल गया कि मरुस्थल में रुककर आराधना करने के बजाय इजरायली लाल समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। फिरौन के सलाहकारों ने उसे बताया कि उनके दास भाग गए और वे कभी लौटकर नहीं आएंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने पहलौठों की मृत्यु का उत्तरदायी ठहराने की मूर्खता पर वे पछतावा करने लगे। उनके महापुरुषों ने अपने डर से संभलकर विपत्तियों को प्राकृतिक कारणों का परिणाम बताया। वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इसराइलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया? फिरौन ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, जिनमें 600 अच्छे से अच्छे रथ और मिस्र के सारे रथ, घुड़सवार, सेनापति और सिपाही सम्मिलित थे। राजा ने स्वयं अपने राज्य के महान पुरुषों के साथ आक्रमणकारी सेना का नेतृत्व किया। देवी देवताओं की कृपा दृष्टि पाने के लिए और उनके कार्य की सफलता निश्चित करने के लिए पुजारी भी उनके साथ गए। राजा अपनी शक्ति के भव्य प्रदर्शन के द्वारा इसराइलियों को भयभीत करने के लिए कृतसंकल्प था। मिस्रियों को डर था कि इसराइल के परमेश्वर के प्रति बालात समर्पण उन्हें अन्य राष्ट्रों द्वारा उपहास का पात्र बना देगा, लेकिन यदि वे शक्ति के महान प्रदर्शन के साथ आगे जाकर पलायकों को लौटाकर ले आएंगे तो वे अपने सम्मान को भी बचा लेंगे और बंधकों की सेवाओं को भी पुनः प्राप्त कर लेंगे। इब्री अपना डेरा समुद्र के किनारे डाले हुए थे, जिसका जल उनके सामने अगम्य अवरोध प्रस्तुत कर रहा था और दक्षिण की ओर एक ऊबर खाबड़ पहाड़ ने भावी प्रगति को बाधित कर दिया। अचानक ही उन्होंने बहुत दूरी पर चमचमाते कवच और गतिमान रथों को देखा, जो एक सशक्त सेना की अग्रिम सुरक्षा का प्रतीक थे। जैसे जैसे सैन्य दल निकट आया, मिस्र की सेनाएं उसके पीछे पीछे दिखाई पड़ी। इसराइलियों के हृदय भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, लेकिन अधिकतर लोग अपने दुखड़े लेकर शीघ्रता से मूसा के पास पहुंचे। क्या मिस्र में कब्रें न थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुमसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा इस बात से अत्यंत खेदित था कि उसके लोग परमेश्वर में इतना कम विश्वास रखते थे, बावजूद इसके कि उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन उन्होंने कई बार देखा था। वे उस पर अपनी परिस्थिति से संबंधित कठिनाइयों और खतरों का आरोप कैसे लगा सकते थे, जबकि उसने परमेश्वर की निश्चित आज्ञा का पालन किया था। यह सच था कि परमेश्वर के हस्तक्षेप के अभाव में उनके छुटकारे की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन ईश्वरीय निर्देश का पालन करने के बाद इस स्थिति में लाए जाने के कारण मूसा को परिणामों का डर नहीं था। उसने शांति से लोगों को आश्वस्त किया, डरो मत, खड़े होकर वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसराइलियों को परमेश्वर के सम्मुख प्रतीक्षा में रखे रखना आसान कार्य नहीं था। अनुशासन और आत्मसंयम के अभाव में वे उग्र और अतर्क संगत हो गए थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे शीघ्र ही उनके आतताइयों के हाथों में पड़ जाएंगे और वे ऊंची आवाज में विलाप करने लगे। बादल के आश्चर्यजनक खंभे को परमेश्वर द्वारा आगे बढ़ने का संकेत मानते हुए वे उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वे आपस में संदेह प्रकट करने लगे, क्योंकि क्या वह उन्हें पहाड़ के उस तरफ नहीं ले गया जहां का मार्ग दुर्गम था? इस प्रकार उनके भ्रमित विवेक को परमेश्वर का स्वर्गदूत त्रासदी का संदेशवाहक प्रतीत होने लगा। लेकिन अब जब मिस्री सेना उन्हें आसान शिकार समझकर आगे बढ़ी, बादल का खंभा शान से स्वर्ग की ओर उठा, इसराइलियों के ऊपर से निकला और उनके और मिस्रियों की सेना के बीच जा खड़ा हुआ। पीछा करने वालों और पीछा किए जाने वालों के बीच अंधकार की एक दीवार खड़ी हो गई। मिस्री अब इब्रियों के डेरे को देख पाने में असफल थे और पड़ाव के लिए विवश हो गए, लेकिन रात के गहराने पर बादल की दीवार इब्रियों के लिए प्रकाश बन गई और पूरे शिविर को दिन जैसे प्रकाश से भर दिया। इसराइलियों के मन में आशा का संचार हुआ। मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। भजन संहिता का लेखक भजन में इसराइल द्वारा समुद्र को पार करने का इस प्रकार वर्णन करता है, तेरा मार्ग समुद्र में था और तेरा रास्ता गहरे जल में था, और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं हुए। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। भजन संहिता 77 आयत 19-20। तब मूसा ने अपना लाठी वाला हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और समुद्र दो भागों में बट गया, और इसराइली समुद्र के बीच सूखे स्थल पर से होकर निकले, और जल उनके दाएं और बाएं ओर दीवार के समान खड़ा रहा। परमेश्वर के आग के स्तंभ का प्रकाश झागदार लहरों पर चमक रहा था, और समुद्र के जल के बीच हल रेखा के समान काटे हुए मार्ग को प्रकाशमान करते हुए दूरस्थ किनारे के धुंधलेपन में खो गया। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। वो रहस्यमयी बादल उनकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने आग के स्तंभ में परिवर्तित हो गया। मेघ गर्जन के साथ बिजलियां चमकती रहीं, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश में मेघों का तीव्र गर्जन लोगों ने सुना, फिर उन बादलों से बिजली के तेरे तीर चारों ओर चले, कौंधती बिजली में तेरे गरजने का स्वर सुनाई दिया, जगत बिजली से चमक उठा, धरती हिल उठी और थर थर कांप उठी। भजन संहिता 77 आयत 17-18। मिस्री निराश और भ्रम में जकड़े जा चुके थे। आकाश और पृथ्वी के प्रकोप में, जिसमें उन्होंने एक क्रोधित परमेश्वर के स्वर को सुना, उन्होंने अपने कदम पीछे हटाकर उसी समुद्र तट की ओर भागने का प्रयत्न किया जिसे वे पीछे छोड़कर आए थे। लेकिन मूसा ने अपना लाठी वाला हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और दीवार के समान खड़ा हुआ जल अपने शिकार के लिए उत्सुक दहाड़ते हुए फुफकारते हुए ज्यों का त्यों हो गया और अपने स्याह अंधेरों में मिस्री सेना को निगल गया। भोर होते ही इसराइलियों ने अपने सशक्त शत्रुओं के मृत पड़े कवचधारी शवों को समुद्र के तट पर फेंके हुए देखा। एक ही रात सबसे भयानक विपत्ति से संपूर्ण छुटकारा ले आई थी। युद्ध में अनभ्यस्त दास, स्त्रियां, बच्चे, गाय बैल, समुद्र जिनके सामने था और पीछा करती हुई मिस्र की सेनाएं जिन पर हावी हो रही थीं, उस विशाल भीड़ ने समुद्र के बीच से रास्ता खुलते हुए और शत्रुओं द्वारा अपेक्षित विजय के क्षण में शत्रुओं को पराजित होते हुए देखा। उनके छुटकारे का श्रेय केवल यहोवा को गया, और विश्वास और आभार अभिव्यक्ति में उनके हृदय उसकी ओर मुड़ गए। उनकी भावनाएं प्रशंसा के गीतों में अभिव्यक्त हुईं। परमेश्वर का आत्मा मूसा पर उतरा और उसने धन्यवाद के विजय गान में लोगों की अगुवाई की, और ये गाना मनुष्य को ज्ञात गीतों से सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएंगी। तेरी बांह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक, हे यहोवा, तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाए, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे, हे प्रभु, तूने आप ही स्थिर किया है। निर्गमन 15 आयत 1 से 17। समुद्र के स्वर के समान ये श्रेष्ठ रचना इसराइलियों की सेना ने गाई। तब मूसा की बहन मरियम ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो लीं। वो आनंदमयी टेक स्थल और समुद्र पर ध्वनित हुआ, और पहाड़ों में उनकी प्रशंसा के शब्द गूंज उठे। यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है।
इस गीत और उस महान छुटकारे ने, जिसका ये स्मरण कराता है, ऐसी छाप छोड़ी जो इब्री लोगों की स्मृति से कभी भी विलोप नहीं होगी। युगानुयुग इसे इसराइल के गायकों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दोहराया गया, जिससे ये प्रमाणित होता है कि यहोवा उस पर विश्वास रखने वालों का बल और छुटकारा है। ये गीत केवल यहूदियों का ही नहीं है, ये धार्मिकता के सभी शत्रुओं के सर्वनाश और परमेश्वर के इसराइल की निर्णायक विजय की ओर संकेत करता है। पात्मास के भविष्यद्वक्ता ने श्वेत वस्त्रधारी भीड़ को देखा जो जयवंत हुए थे, जो आग के साथ मिले हुए कांच के समुद्र पर खड़े हुए थे, और जिनके पास परमेश्वर की वीणाएं थीं, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हैं। प्रकाशित वाक्य 15 आयत 2-3। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। भजन संहिता 115 आयत 1। इसराइल के छुटकारे के गीत में यही भावना व्याप्त थी, और परमेश्वर का भय मानने वालों में और उससे प्रीति रखने वालों के हृदयों में इसी भावना का वास होना चाहिए। पाप के बंधन से हमारे जीवन को स्वतंत्र कराने में परमेश्वर ने लाल समुद्र पर इब्रियों को दिलाए छुटकारे से भी अधिक महान छुटकारा हमें दिलवाया है। इब्री समुदाय के समान हमें भी मनुष्य के पुत्रों के लिए, उसके अद्भुत कार्यों के लिए, हृदय और आत्मा और स्वर से प्रभु की प्रशंसा करनी चाहिए। जो परमेश्वर के महान अनुग्रह पर चिंतन करते हैं, वह उसके द्वारा दिए गए साधारण उपहारों के प्रति उदासीन नहीं होते। वे आनंद का कमरबंद धारण करके अपने हृदय में परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं। परमेश्वर के हाथों से प्राप्त प्रतिदिन की आशीषें, विशेषकर स्वर्ग और आनंद को हमारी पहुँच में लाने के लिए यीशु की मृत्यु सर्वदा के लिए आभार का विषय होना चाहिए। स्वयं को हमारे साथ जोड़ने में, उसके लिए अद्भुत धन होने के लिए, परमेश्वर ने हम भटके हुए पापियों के प्रति कैसा प्रेम, कैसी संवेदना दिखाई है।
हमारे उद्धारकर्ता ने कितना महान बलिदान दिया कि हम परमेश्वर की संतान कहला सके। उद्धार की योजना में निहित उस धन्य आशा के लिए हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी अनमोल प्रतिज्ञाओं और स्वर्गीय धरोहर के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसको प्रशंसा हो कि यीशु हमारी मध्यस्थता करने के लिए जीवित है। भजन संहिता 50 आयत 23 में सृष्टिकर्ता कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। स्वर्ग के समस्त निवासी एकजुट होकर यहोवा की प्रशंसा करते हैं। हम भी स्वर्गदूतों का गीत सीखें, जिसे हम उनके जगमगाते समूह से जुड़ने पर गा सकें। हम भजन संहिता के लेखक के साथ कहें, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा जब तक मैं बना रहूंगा। तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। भजन संहिता 146 आयत 2। देश देश के लोग तेरी प्रशंसा करें हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरी प्रशंसा करें। भजन संहिता 67 आयत 5। परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से इब्रियों को समुद्र के सामने दुर्गम पहाड़ में लाया ताकि वह उनके छुटकारे में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके और उनका उत्पीड़न करने वालों के घमंड को मिटा सके। वह उन्हें किसी और प्रकार से भी बचा सकता था, लेकिन उसने उनके विश्वास को परखने के लिए और उस पर उनके विश्वास को दृढ़ करने हेतु इस तरीके को चुना। लोग थके हुए और भयभीत थे, लेकिन यदि मूसा द्वारा आगे जाने की आज्ञा सुनकर भी वे पीछे रह जाते तो परमेश्वर ने कभी भी उनके लिए मार्ग नहीं खोला होता। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। इब्रानियों 11 आयत 29। उसी समुद्र की ओर बढ़ने में उन्होंने प्रमाणित किया कि मूसा के द्वारा कहे गए परमेश्वर के वचन में वे विश्वास रखते थे। जो कुछ करने के वे योग्य थे उन्होंने किया, और फिर इज़राइल के सर्वशक्तिमान ने उनके पैरों के लिए पथ बनाने के लिए समुद्र को विभाजित कर दिया।
यह सिखाया गया महत्वपूर्ण पाठ सर्वदा के लिए है। मसीही जीवन प्रायः खतरों से घिरा होता है और कर्तव्य का पालन करना कठिन प्रतीत होता है। कल्पना आने वाले विनाश को अपने सामने चित्रांकित करती है और दासत्व और मृत्यु को पीछे, लेकिन परमेश्वर का स्वर स्पष्ट रूप से कहता है, आगे बढ़ो। भले ही हमारे पैरों तले ठंडी लहरें हों और हमारी आंखें अंधकार को ना भेद सकें, फिर भी हमें इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो बाधाएं हमारी प्रगति के रास्ते में आती हैं, वे एक संदेहात्मक भावना के आगे कभी दूर नहीं होंगी। जो पराजय और असफलता की आशंका के समाप्त होने तक और अनिश्चितता की प्रत्येक छाया के विलोप होने तक आज्ञा पालन को टालते रहते हैं, वे कभी भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अविश्वास फुसफुसाता है। हमें बाधाओं के दूर होने तक और जब तक कि हमें रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, रुके रहना चाहिए। लेकिन विश्वास साहस के साथ, सब बातों की आशा रखते हुए, सब बातों की प्रतीति करते हुए आगे बढ़ने का आग्रह करता है। जो बादल मिस्रियों के लिए अंधकार की दीवार था, इब्रियों के लिए वो प्रकाश की बहुतायत थी, जो पूरे डेरे को प्रकाशमान कर रही थी और उनके मार्ग पर प्रकाश बिखेर रही थी। इसी प्रकार परमेश्वर के काम अविश्वासी के लिए अंधकार और निराशा लाते हैं, लेकिन एक विश्वासी के लिए वे प्रकाश और शांति से भरपूर हैं। परमेश्वर द्वारा दिखाया गया मार्ग चाहे जंगल या समुद्र से होकर निकले, लेकिन वो एक सुरक्षित मार्ग है।